बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 16 जनवरी दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अतिवादी तत्वों के चंगुल में भारत पाकिस्तान संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाहौर यात्रा के बाद बंधी उम्मीदों पर पठानकोट हमले से पानी फिर गया। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने की कोशिशों पर पलीता क्यों लगाया जाता है, कौन लगाता है पलीता? सवाल यह है कि क्या दोनों देश अपने अपने अतिवादी तत्वों के चंगुल में है? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है बहस का विषय। अपनी राय रखें, मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001। लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पठानकोट हमले के संदर्भ में भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश की सहने की क्षमता खत्म हो गई है और रक्षा मंत्री के तौर पर वे अब और सहन नहीं कर सकते। रक्षा मंत्री जयपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक सेना में भर्ती की रैली का उद्घाटन किया और कहा कि संघीय बजट के लिए उन्होंने लोगों के विचारों और मतों को भी इकट्ठा किया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के राष्ट्रपति का कहना है कि राजधानी उगाडुगू के एक होटल पर हुए इस्लामिक चरमपंथी हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं। ये लोग 18 अलग अलग देशों के नागरिक हैं। राष्ट्रपति रॉश कबोरे ने कहा कि चार हमलावर भी मारे गए हैं। हमले में छुड़ाए गए बंधकों के मुताबिक चरमपंथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद इमारत में आग लगा दी। अलकायदा इन द इस्लामिक मगरिब नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ताइवान के चुनावों में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की आज़ादी समर्थक उम्मीदवार साई इंगवन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गई हैं। साई इंगवन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। सत्तारूढ़ दल कुओमिंतांग पार्टी, जो चीन से नज़दीकी रिश्तों का समर्थन करती है, चुनाव हार गई है। जीतने के बाद साई इंगवन ने कहा कि उनकी जीत पूरी दुनिया के लिए एक स्पष्ट और सशक्त संदेश है। 2016 में अपने लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए हमने एक बार फिर एक लोकतांत्रिक देश और ताइवानी जनता के तौर पर अपने स्वाभिमान को जाहिर किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हमारा संदेश यही है कि लोकतंत्र ताइवानी जनता के मानस पर दृढ़ रूप से अंकित मूल्य है। ताइवान के 2,30,00,000 लोगों का संकल्प ही हमारे लोकतांत्रिक जीवन की दिशा है। ये थे साई इंगवन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उधर एक ताइवानी गायिका को टेलीविजन के एक कार्यक्रम के दौरान ताइवान का राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए माफ़ी मांगने को बाध्य किया गया है। जो त्सुयू पर ताइवानी अलगाववादी होने का आरोप भी लगाया गया। बाद में उन्होंने एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने झुककर कहा कि वो चीनी होने पर हमेशा गर्व करती रही हैं। चुनाव का दिन होने के बावजूद ताइवान में इस खबर का दिन भर जोर रहा और दोनों राजनीतिक दलों के नेता जो त्सुयू का बचाव करते रहे। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने कहा है कि ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध आज हट जाएंगे। उन्होंने वियना में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से मिलने से पहले ये बात की। उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA आज इस बात की पुष्टि करेगी कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर किए गए समझौते के तहत अपनी आणविक गतिविधियां सीमित की हैं या नहीं। अगर ये तय हो जाता है कि ईरान समझौते का पालन कर रहा है, तो इससे ईरान पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय आप जान चुके हैं, हमारी टेलीफोन लाइनें भी खुल चुकी हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1811-7001। विषय भी एक बार दोहरा देता हूं, भारत और पाकिस्तान के संबंध अतिवादी तत्वों के चंगुल में फंस चुके हैं क्या? मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर और भारत में रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन। आप श्रोता भी साथ में कार्यक्रम में शामिल हैं। सबसे पहले मैं सुशांत जी के पास चलता हूँ। सुशांत, ये बताइए कि पलीता कौन लगा रहा है दोनों देशों के बीच में?
देखिए, यही तो अब पता करेंगे। अगर पाकिस्तान की रियासत इस तरीके के हमलों में मुलव्वस नहीं है तो फिर उनकी तरफ से हमको खातिर ख्वाह कदम उठाए जाएंगे और हमारे को नजर आएंगे। आज तक तो आए नहीं है, अब अगर बात पलट चुकी है, नीति भी बदल चुकी है, तो वो फिर हमको कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में वो कदम उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन वो उस तरीके के ना हो जिसको आई वॉश कहा जाता है कि दिखाने भर के लिए तो बड़ा कुछ होता है लेकिन फिर अंदर खाने कुछ और ही कहानी चल रही होती है
जी।
तो अगर रियासत और इस तरीके के दहशतगर्दों के बीच में कोई तालमेल नहीं है तो फिर मेरे ख्याल दहशतगर्द भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बिगाड़ पैदा करने में ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाएंगे
जी।
लेकिन अगर जैसे पहले होते आया है कि रियासत और जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके आगे बढ़ते हैं तो फिर मेरे ख्याल इसको गैर रियासती तत्वों के ऊपर मेरे ख्याल ये दोष डालना मुनासिब नहीं होगा।
आप गैर रियासती तत्वों की बात कर रहे हैं, मतलब ये चरमपंथी संगठनों का जिक्र कर रहे हैं आप।
जी सीधे
पाकिस्तान चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार मरियाना बाबर के पास। मरियाना जी, आपने सुशांत सरीन को सुना, हम कई तरह के ये पठानकोट हमले का जिक्र कर रहे थे जो कि अभी हाल में हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए बस लेकर, नवाज शरीफ से बात हुई, 3 महीने बाद करगिल का युद्ध हुआ, 2001 में आगरा में परवेज़ मुशर्रफ वाजपेयी की मुलाकात हुई, भारत में इसी साल संसद पर अटैक हुआ, बातचीत बंद हो गई, 3 साल बाद फिर से 2004 में शांति प्रक्रिया आगे बढ़ी, मुंबई अटैक हुआ, बातचीत पटरी से उतर गई, समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट भी हुआ, उसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई, 2001 में यूसुफ रजा गिलानी को बुलाया हिंदुस्तान में, बातचीत आगे बढ़ी, उसके बाद भारतीय सैनिकों के 2 सैनिक थे उनके छत विछत शव मिले, बातचीत फिर से पटरी से उतरी, अब पठानकोट। ये बार बार पटरी से उतर रही है तो क्यों उतर रही है, क्या अतिवादी तत्वों के चंगुल में फंस रहे हैं?
देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि ये तारीख है, इसको हम छुपा नहीं सकते, हम झूठ नहीं कह सकते कि जी ये कार्रवाई नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, कारगिल में हुई है, मुंबई में हुई है, पठानकोट में हुई है। मगर एक मैं आपको
अगर आप मुंबई की बात कर रही हैं तो हाफिज़ सईद जो भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन पर तो कुछ नहीं होता है।
यही मैं आपसे कह रही हूँ ना कि सबसे पहले तो हम आपके सुनने वालों को ये कहें कि ये तारीख जो आपने दोहराई है ये सच है, इससे पाकिस्तान हट नहीं सकता, ना कोई हिस्ट्री की किताबों से ये लफ्ज़ हटा सकता है। ये एक गलत पॉलिसी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की थी। देखें, ये बात ज़रूरी है कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है, जो भी रही, या बेनज़ीर की रही, जरदारी साहब की रही, नवाज शरीफ की 3 दफ़ा रही, इन्होंने आज तक ऐसे कदम नहीं लिया कि कोई टेररिस्ट अटैक करवाया है हिंदुस्तान में। जब भी हुआ है ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है, परवेज़ मुशर्रफ इन कारगिल, या फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से आया है जो पंजाबी जिहादी हैं। मगर ये कहना कि जी स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो एक तरफ, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की। आप कैसे ऐसे लोगों को अपने मुल्क में इजाज़त दे सकते हैं कि वो जो मर्जी आपकी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल डिरेल कर लेते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आती है हुकूमत के पास।
तो मतलब आप ये कह रही कि नॉन स्टेट एक्टर्स तो हैं ही हैं, जैशे मोहम्मद, जैश वो लश्कर झंगवी और जमात उद्दावा, इस तरह के संगठन तो हैं ही हैं, उसके अलावा जो स्टेट है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये रिस्पॉन्स देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जी हमको तो पता नहीं है वो तो कैसे चले गए। नहीं, सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के ऊपर ये लाजमी है कि आपको पता है कि आपके यहाँ से कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। जैसे हमारे अफगानिस्तान में भी बहुत लंबे बॉर्डर हैं, यहाँ से भी लोग आते जाते हैं, उनकी भी लोग आते जाते हैं। मगर फिर आप तो हाथ बांध के ये नहीं कह सकते जी हम क्या करें, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। यही अब जो पंजाबी जिहादी हैं, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने पाले हैं, इन्होंने इस्तेमाल किए हैं इनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में, अफगानिस्तान में और बोस्निया में। अभी खुशकिस्मती है 2-3 बातों की। एक, जो इस दफा आर्मी चीफ हैं राहिल शरीफ, ही इज़ ए नो नॉनसेंस जनरल, उसने कहा जी बहुत हो गया, और ये नहीं कि हम किसी भारत को खुश करने के लिए या अमेरिका को खुश करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि जी ये जहादियों का किस्सा खत्म करें, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी मूड बदली होगी।
आप कह रही है पाकिस्तान में मूड बदल रहा है? जी
बिल्कुल बदल गया है। देर इज नो एपेटाइट कि हम जिहादियों से जा सकते हैं और ऐसे काम कर सकते हैं। एक बंदा पाकिस्तान में सड़क पे अभी नहीं आया कि जी सुनने में आया है कि मसूद अजहर को गिरफ्तार नहीं प्रोटेक्टिव कस्टडी में ले लिया है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में एक आवाज उठी है? अगर उठी है तो हफीज सईद की उठी हुई है, क्योंकि ये सारे एक ही एक ग्रोह है। पाकिस्तान में अभी हमें हौसला और नहीं है, हम लोग हम मर चुके हैं टेररिस्ट अटैक्स पे फ्रॉम द पाकिस्तान।
मरियाना जी कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो खुद भी चरमपंथ का शिकार रहा है और है, ये आप कह रही हैं। कार्यक्रम में यहाँ पर एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और अपनी राय रखें, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो
हेलो
जी, नाम बताएं।
हेलो सर जी नमस्ते।
नमस्कार
सर, मैं जोधपुर से मिश्रीमल साईं बोल रहा हूँ।
मिश्रीमल साईं जी, जी अपनी बात रखें आप।
जी सर, जी सर, वैसे प्रॉपर गांव तो मेरा बालोतरा है बाड़मेर में। मैं ये कहना चाहता हूँ सर जी कि इसमें अपने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध बनेंगे वो इस रूप में बनेंगे कि मतलब वहां पर भी दो एक ऐसे पक्ष हैं जो एक तो वास्तव में इसके मतलब इस बात के पक्ष में है और दूसरे है जो इसके खिलाफ है। इसी प्रकार से भारत में भी आप देखिए राजनीति को जब देखते हैं, जैसे अभी पठान पर हमला हुआ तो आतंकी हमले के अंदर जो आज राजनीतिज्ञों को एक होना चाहिए, देश के सभी नागरिकों को एक होना चाहिए, देश की सेना को वगैरह को, अगर मान लो भारत की सेना अगर सीमा पर मौजूद है और फिर आतंकवादी सीमा के अंदर आ जाते हैं और देश के अंदर आकर के आतंकवादी हमला कर लेते, जैसे 2001 में संसद पे हमला हुआ। और इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये संबंध है, इनके जो ये मतलब कहना चाहिए एक जहर का जो घूंट जो पिया जा रहा लगातार, इसमें सर जी क्या होता है कि जब से वो जिन्ना साहब थे उन्होंने पाकिस्तान को अलग किया और उसके बाद में जितनी भी समस्याएं आई, भले 1947-48 में जो दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, उसके बाद भी जितनी भी घटनाएं आई है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये दोनों देश आपस में मिलकर के काम करेंगे तो आतंकवाद कितने दिनों तक टिक पाएगा। मैं कहता हूं भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर काम करें, ये करना ही नहीं चाहता। ये तो केवल अमेरिका ने जब अभी इसके ऊपर जो है दबाव डाला तब जाकर के इसने जो ये थोड़ी कार्रवाई की और किसी को पकड़ा किसी को छोड़ा, ये फालतू दिखावा करता है। बाकी भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर संबंध बनाना चाहे और अच्छे संबंध रखना चाहे तो ये सारे मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। एक छोटी सी धारा है 370, उसको भारत का इतना बड़ा देश है और वो उस धारा को नहीं हटा सकता और इतनी बड़ी समस्या है उसको समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो नेहरू जी के समय ये समस्या पैदा हुई थी।
जी, आप थोड़ा विषय से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, कश्मीर पर आ गए आप। दोनों देश मिलकर काम करें, ये बात हमने आपसे समझ ली। एक और श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, उसके बाद सुशांत सरीन के पास चलेंगे।
सर मैं रहमान खान बोल रहा हूँ, गाँव बावनौर जिला बाड़मेर राजस्थान से।
जी
सर मैं ये कहना चाहता हूँ जब भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी संबंधों पर बात आती है तो भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो बात की नहीं करना चाहते।
जैसे
अभी पठानकोट पर जैसे हमला हुआ उस समय भारत सरकार ने तो धैर्य रखा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो ऐसी कई बातें करते हैं जो पाकिस्तान में उनको मजबूर करने के लिए भी करते हैं।
पाकिस्तान में लोगों को मजबूर करने के लिए करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुशांत जी। दो श्रोता थे, एक ने कहा कि दोनों देश मिलकर काम करें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और जो दूसरे श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि धैर्य नहीं रखते। ये धैर्य न रखने वाली जो बात है ये हमारे राजनेताओं पर लागू होती है?
कुछ तो बिल्कुल, जिस तरीके की हमारे समाज हैं और बहुत तरीके के विषयों पे अलग अलग राय पाई जाती है तो वो तो होगा। अगर हम ये माने कि 100 करोड़ के मुल्क में, 125 करोड़ के मुल्क में सारे के सारे लोग एक ही भाषा बोलेंगे तो वो तो नहीं होने वाला, और पाकिस्तान में भी शायद वो नहीं होगा। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जौन से अनासिर दूसरे देश में जाकर के हमला करते हैं, क्या उनको रियासत से मदद मिलती है या रियासत आंखें नीचे रहती है या कि रियासत उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करती है?
कोई भी रियासत ये नहीं कहेगी कि हाँ हमने चरमपंथियों को बढ़ावा दिया है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, कोई नहीं कहेगा। ये तो
नहीं शर्मा जी, कहेगा तो कोई नहीं, लेकिन जो होता है वो हर एक चीज कहने से नहीं होती, बिना कहे भी बड़ा कुछ हुआ हो रहा होता है। तो एक तो मुद्दा ये है, दूसरा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से मरियाना जी की बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत लोग हैं, और ये वही लोग हैं जो आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से जब से जिहादी फलसफा पाकिस्तान में फैला है तब से वो पाकिस्तान को बोलते जा रहे हैं, अपने लोगों को बताते जा रहे हैं कि ये एक दिन ये जो दानव है ये हम ही को आकर खाएगा। तो वो बात आज होने लग गई है, लेकिन मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने उस दानव को खड़ा किया या जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं वो आज भी उसी भाषा बोलते हैं। और मरियाना जी ने बहुत लोगों की बात की, लेकिन इन्हीं के मीडिया में कुछ लोग हैं, कुछ साबिक जनरल, कुछ साबिक सफारतकार, जैसे वो जफर हिलाली, ये शाहिद मसूद, मुबशर लुकमान, जिनको माना जाता है कि ये फौज के बहुत करीबी लोग हैं, और उनकी जो बातचीत है पठानकोट के हमले में उससे तो हमको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रवैया कोई बहुत ज्यादा तब्दील हुआ है, खासतौर पर भारत को लेकर के।
मरियाना जी आप जवाब दे सकती हैं।
जो आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं उनके ऊपर हाथ जरूर डाला गया है, लेकिन वो जो आतंकवादी भारत के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर आज तक तो हमने कोई कड़ी कार्रवाई होते हुए नहीं देखा।
मरियाना जी
देखिए दो बातें हैं, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जैसे कि आप, मैंने आपको हाफिज सईद का नाम भी पहले लिया, हमारे जमात इस्लामी है, राइट विंग पार्टी है, जब हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होते हैं यकीन करें इनको तो एक सीट भी नहीं मिलता है, मुश्किल से जमात इस्लामी को 2-3 सीट पार्लियामेंट में मिलता है। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि इसे आप पाकिस्तानियों का मिजाज समझें, ये जो वोट देने जाते हैं ये किसको वोट देने जाते हैं, और ये सारे नाम जो लिए गए हैं ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बाहर है, ठीक है, इन्फ्लुएंस इनका होता है, बट ये आपको दिखाता है। एक बात मैं आपको अगर इजाजत हो मैं कहूँ, हम इन सारी बातों को बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड रखते हैं मगर इसका एक ह्यूमन एंगल भी है। जब पेशावर में अटैक हुआ है बच्चों के स्कूल पे तो यहाँ कहा गया हुकूमत की तरफ से कि जी इसमें रॉ का भी हैंड है पाकिस्तान तालिबान के साथ। अभी जब पठानकोट में अटैक हुआ है और 7 ऑफिशियल्स के 7 बेवे हैं जिनकी बीवियां रह गई हैं, उनके बच्चे हैं, अभी ये दोनों तरफ से जब आप लोगों को कहेंगे कि जी पाकिस्तान इंडिया दोस्ती करना चाहती है, ये करना चाहती है, तो अगर मैं उनकी जगह होती मैं कहती नहीं जी बिल्कुल नहीं, मेरा शोहर मर गया है, मेरे यतीम बच्चे हैं, ऐसे जो बच्चे मरे हैं पेशावर में उनके माँ बाप कहेंगे ये कैसे नवाज शरीफ है जो दोस्ती का नाम लेता है भारत के साथ जब हमारे बच्चे मार दिए हैं रॉ ने। तो ये एंगल भी आपको देखना चाहिए, ये ह्यूमन एंगल है जिसमें कह तो देते हैं कि जी कोलैटरल डैमेज हो गया है, लोग ठीक है मर गए हैं और अपने देश के लिए उन्होंने एक सेक्रीफाइस दिया है, मगर पीछे जो रह जाते हैं अभी वो बच्चे जब बड़े होंगे उनसे पूछा जाएगा आपके
सुशांत जी कुछ आप कह रहे हैं। सुशांत जी कुछ आप कह रहे हैं।
देखिए बदर जी, अगर प्योरली थियोरेटिकल लेवल पे बात हो तो जो मरियाना जी कह रही है वो बात ठीक है, लेकिन अब इन्हीं के एक साबिक DGISI हैं असद दुरानी साहब, अपने एक साक्षात्कार में उनसे जब सवाल पूछा गया पेशावर हमले के ऊपर तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बड़ी गेम होती है स्ट्रेटेजिक गेम उसमें इस तरह का कोलैटरल डैमेज या जो आम आदमियों का कत्ले आम है उसको आपको नजरअंदाज करना पड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्हीं के एक और साबिक ISI चीफ थे उस समय सर्विंग थे, जो तहरीके तालिबान जिसके बारे में मरियाना कह रही है कि वो रॉ के एजेंट हैं, तो वो ISI चीफ जो थे वो तो उनको पेट्रियोटिक पाकिस्तानी होने का तगमा दे रहे थे एक जमाने में, जबकि वो पाकिस्तान के लोगों का कत्लेआम तब भी कर रहे थे। अब ये आज तक एक श्रेड ऑफ एविडेंस नहीं आया जिसमें ये बोला जाए कि भाई हाँ रॉ वाले एक्चुअली या भारत की कोई रियासती इदारा इसमें एक्चुअली मुलव्वस है या इनकी तकवीत कर रहा है या इनकी किसी तरीके से समर्थन कर रहा है, आज तक एक एविडेंस नहीं। जो डोजियर्स भी इन्होंने दिए उसके बारे में भी जो इनके मुशीर हैं एडवाइजर हैं फॉरेन अफेयर से, उन्होंने खुद पार्लियामेंट में बोला है कि नहीं उसमें कोई तथ्य नहीं थे लेकिन हमने कुछ इंडिकेशंस दी थी, कुछ इशारे दिए थे कि इनका हाथ हो सकता है। अब एक झूठे प्रोपोगंडा को सच मान करके एक दोबारा से एक पूरे का पूरा फलसफा बनाना, मेरे ख्याल ये पाकिस्तान सिर्फ वही डिनायल वाले मोड में रहता है, और ये हमारे तो माइथोलॉजी में भी ये चीजें दी हुई है कि अगर आप इस तरह के राक्षस बनाएंगे तो
एक दिन आप ही को
राक्षस आपको वापस आके खाएंगे।
सुशांत जी आपको आप दोनों को रोक रहा हूँ यहाँ पर एक श्रोता पाकिस्तान से बहुत देर से लाइन पर मौजूद हैं, आप दोनों की बातें सुन रहे हैं जी, नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मेरा नाम नमतुल्ला है, मैं क्वेटा से बोल रहा हूँ, क्वेटा के साथ ही कुचला जगह वहाँ से बोल रहा हूँ।
क्वेटा से बोल रहे हैं जी, अपनी बात रखें। हाँ
जी जी, हर अर्ज ये है कि अल्जाम तो हर कोई लगा सकता है, अल्जाम हर कोई लगा सकता है, लेकिन एक हकीकत है कि दोनों तरफ से एक्सट्रीमिस्ट जो है वहाँ इंतहा पसंद, मजहबी इंतहा पसंद जो है, उनको अगर कंट्रोल ना किया जाए ना हम देख सकेंगे, ना खुशहाली देख सकेंगे, ना दोस्ती होगी। हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट है जो हमने पाल रखे है हमारे तुर्सी पसंदाना अजाइम के लिए, वो हमारे गले पड़े हैं।
तो दोनों देश
जो
मुल्क
हो रहा है सब उन्हीं की वजह से हो रहा है, उन्हीं को कंट्रोल करना चाहिए। सबसे पहले इनका फर्ज बनता है कि अपने उन लोगों को कंट्रोल करे जो मजहबी इंतहा पसंद है।
हाँ।
और जो फसाद फैलाना चाहते है, तो जाहिर है कि ना यहाँ पाकिस्तान में ना वहाँ इंडिया में आवाम जो है वो कोई भी ये नहीं चाहता है कि दुश्मनी हो, लोग मरे, फसाद हो।
तो दुश्मनी जी 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 नियामत साहब, दुश्मनी कौन पैदा कर रहा है, ये रोड़ा कौन लटका रहा है?
ये ये दोनों तरफ से, मतलब मेरे ख्याल में तो ये है कि जो इंतहा पसंद है, चाहे हिंदू इंतहा पसंद हो या मुस्लिम इंतहा पसंद हो, वो दोनों कंट्रोल से बाहर होते ज्यादा जा रहे हैं।
जी जी, नियामत खान साहब क्वेटा से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल थे, बहुत बहुत शुक्रिया। मरियाना जी, ये जो कह रहे हैं नियामत साहब ने अभी एक बात कही कि जो दहशतगर्दी को पसंद करते हैं, और दोनों तरफ से, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो या अतिवादी तत्व जिनको हम कह रहे हैं, अपनी बात अगर समझ में नहीं आती तो इस तरह की हरकतें करते हैं, और सबसे पहला काम होता है कि पाकिस्तान से बातचीत बंद करो।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो है ना, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, अभी आप देख लें कल क्या हुआ, पीआईए के दफ्तर पे अटैक हुआ, आपके जो राइट विंग हिंदुस्तान के जो राइट विंग एलिमेंट्स हैं इन्होंने वो अटैक किया। तो अभी यहाँ से पाकिस्तान के लोग बहुत पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करेंगे जाके पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन, इनको पता नहीं था कि इन्होंने सिक्योरिटी हम पीआईए के दफ्तर को नहीं दी। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जब भारत की सरकार ने कहा कि हम अरेस्ट करेंगे, और बल्कि वो तो अरेस्ट भी हो गए शिवसेना के जो लीडर थे, और उन्होंने एक्शन लिया, ये खता हुआ है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। जब ऐसे सेंसिटिव टाइम पे यू डू गिव सिक्योरिटी टू एनीथिंग विच इज पाकिस्तानी, ठीक है, मगर लीडरशिप जो होती है ना वो ऐसे राइट विंग एलिमेंट्स आइदर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, उनके हाथ पे नहीं चलती। अभी आप पठानकोट का देख लें, किस्सा पठानकोट में कोशिश की गई और एलिगेशंस हैं मसूद अजहर के जिहादी ग्रुप के ऊपर, मगर लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स, ज्यादातर आई वुड गिव क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, हालांकि ही वॉज वेरी अनपॉपुलर इन पाकिस्तान, जो उनका गुजरात का पास था एंड ऑल था, पर धीरे धीरे हमने देखा कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी प्राइम मिनिस्टर जो एक किताब खोल के ब्यूरोक्रेसी को बुला के ऑन द लाइन जाएगा, नहीं, ही इज अ मैन विथ हिज ओन आइडियाज, और उन्होंने ये करके दिखाया कि जी ठीक है, हम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का टेलीफोन कॉल आया है और वो कह रहे हैं कि वी आर हर्ट दैट दिस हैज हैपेंड, और हम आपसे तावन करेंगे। तो दोनों लीडरशिप को आप दाद दें, अभी ये किस्सा कहाँ जाएगा मैं अभी नहीं कह सकती। अब तक दोनों लीडरशिप ने हाथ में हाथ डाल के कहा है कि जी ठीक है, हम इसको डीरेल, टॉक्स को डीरेल होने नहीं देंगे रिलेशंस को, और हम इसको आगे जाने देंगे।
जी,
अभी देख ले कहां तक बात पहुंची है, पाकिस्तान की एक इन्वेस्टिगेटिव टीम जिसमें सिक्योरिटी ऑफिशियल होंगे, वो आपकी एक सेंसिटिव एरिया एयरबेस जहां में कहीं पाकिस्तानी,
लेकिन ये तो इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी तो बहुत बार आती है पाकिस्तान में कि दो नेता मिलते हैं और उसके बाद
फोटो अपॉर्चुनिटीज तो हो चुकी हैं बहुत दफा,
देखिए वाजपेयी के साथ हुई, मुशर्रफ के साथ हुई, लगातार
तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में भाई साहब, मूड नहीं है, ये काम हो के रहेगा। अगर हम लोग ने हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अरेस्ट कर लिए हैं, मदरसे सील कर लिए हैं, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम इसको मुंबई केस नहीं बनाने देंगे।
जी,
जो लटक रहा है लटक रहा है, और कभी जज चला जाता है और कभी विटनेस प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, आप यकीन करें मुझे
माहौल बदल रहा है। आप ये कह रही माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। सुशांत,
इस दफा पाकिस्तान अवाम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ को नहीं छोड़ेगा।
जी,
अगर
जी,
सबूत आया कि ये मसूद अजहर का गैंग है तो यकीन करें
तो उस पे कार्रवाई होगी।
मिलिट्री कोर्ट्स में भेज दे, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स इज द इजीएस्ट वे।
आप कह रही कार्रवाई होगी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, सुशांत जी के पास भी जाना है, एक श्रोता के पास भी जाना है। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
हाँ सर नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, रोमा सिंह।
रोमा सिंह जी स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए।
सर जैसे कि मतलब मैम ने बताया, फिर सर ने बताया, आखिर अतिवाद का प्रतिकार कैसे किया जाए? कहने का मतलब ये है जब दोनों देश मिल करके कार्य नहीं करेंगे, चाहे मैं अपने देश भारत की मैं बात करती हूँ कि मतलब यहाँ के जो नेता हैं जैसे केजरीवाल हुए, दिग्विजय सिंह वगैरह हुए, तो मोदी साहब गए वहां से अफगानिस्तान से लाहौर मिलने के लिए, तो इसमें जब पठानकोट पे हमला हुआ तो बहुत लोगों ने बहुत सारी ऐसी निकाले कि मतलब वो गए हैं तो यहाँ से मिठाई भेजी है पठानकोट के रास्ते। तो आखिर जब दोनों देश मिलके कार्य नहीं करेंगे तो शांति कैसे फैलेगी? पूरे विश्व की मैं बात कर रही हूँ, और इस तरीके से अगर होगा तो फिर ना तो पाकिस्तान में शांति फैल पाएगी और ना ही भारत में। और ऐसा युद्ध ऐसी वो घृणित वस्तु है जिससे मतलब पूरा भारत क्या और पाकिस्तान क्या पूरा विश्व इसके चपेट में है, तो इसके लिए दोनों देशों को मिल करके कार्य करना चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कानपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई थी सुशांत जी। मरियाना बाबर कह रही हैं कि पाकिस्तान में जो आवाम है वो उसका नजरिया बदल गया है और चीजें अब बदल रही हैं वहां पर, आपको लगता है?
देखिए इसका तो प्रमाण जो है वो अगले चंद दिनों में, मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि अगले चंद दिनों में वो प्रमाण मिलेगा कि वो कितना बदला है, और खास तौर पर जो रियासती इदारे हैं उनकी सोच में कितनी तब्दीली आई है, उनकी नीति में कितनी तब्दीली आई है और नियत में कितनी तब्दीली आई है। मेरे ख्याल वो जो, और मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ मरियाना से, कि अगर पाकिस्तान इसको संजीदगी से इस सारे केस को परस्यू करे और बहुत सारे जो एविडेंसेस होंगे, क्योंकि ये जो क्राइम हुआ पठानकोट में इसकी नेचर ऐसी है कि इसमें बहुत सारे जो तथ्य होंगे वो पाकिस्तान को खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता करने पड़ेंगे, जैसे कि 26/11 में पाकिस्तान ने किया और बहुत सारे प्रमाण भी इकट्ठे किए, लेकिन फिर वो केस को गिरने दिया गया या उसको बहुत कमजोरी से लड़ा गया।
अब कुल मिलाकर
इस पर्टिकुलर केस में मिलकर ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके के प्रमाण पाकिस्तान अंदर अपने गैदर करता है, और जैसे मरियाना कह रही है कि अगर वो इस केस को मिलिट्री कोर्ट में लेकर के जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल एक बहुत अच्छी फिजा क्रिएट होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और वो जो एक फुकदान है ट्रस्ट का वो भी काफी हद तक
भरेगा।
एक और चीज जो आपके कई श्रोताओं ने बोला कि दोनों देशों को मिलकर के काम करने की जरूरत है, मेरे ख्याल आतंकवाद आज की डेट में एक सारे विश्व की प्रॉब्लम बन गई है, और ये मात्र एक देश अकेला या दो देश मिलकर इसको नहीं लड़ सकते, ये सारे विश्व के जितने सभ्य देश हैं उन सबको सर जोड़ करके और अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज करके इस आतंकवाद को जड़ से खत्म करना पड़ेगा।
लेकिन लेकिन आखिरी सवाल, आखिरी टिप्पणी, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इन पे लगाम कैसे कसेगी?
नहीं, उसमें तो हर रियासत को अपने अंदर भी वो काम करना पड़ेगा, जिस तरीके के सख्त कदम इनके खिलाफ उठाने पड़ेंगे वो भी होगा।
चलिए देखा जाएगा कि पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार किस तरह से कदम उठाती है और हिंदुस्तान उसका जवाब कैसे देता है और कैसे दरमियानी रिश्ते दोनों देशों के सुधरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत सरीन, और बहुत बहुत शुक्रिया मरियाना बाबर आपका। इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पठानकोट हमले के संदर्भ में भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि देश की सहने की क्षमता खत्म हो गई है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में राजधानी उगाडुगू के एक होटल पर हुए इस्लामिक चरमपंथी हमले में कम 23 लोग मारे गए हैं। ताइवान के चुनावों में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की आजादी समर्थक उम्मीदवार साई इंग वन राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गई है। बीबीसी समाचार।
तो आज के बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम यानी घटना चक्र में आपसे फिर मुलाकात होनी तय है। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।